जी और आदरणीय शिलू बहन जी का हम स्वागत करेंगे ताली बजा के। बैठे आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं और राजयोग शिविर जो अपने यहाँ मधुबन में होते हैं 1976 से आप राजयोग शिविरों का संचालन करते हैं, उसके निर्देशिका हैं। पांचों ही महाद्वीपों में 75 से भी अधिक देशों में आपने यात्रा की है और यहाँ जब विदेशी भाई बहने आते हैं तो उनकी पालना के आप विशेष नमित हैं, उनके कार्यक्रमों का भी आप आयोजन करते हैं। जो भी अपने टीवी चैनल्स में कार्यक्रम चलते हैं या अब तक वर्षों से चलते आए हैं सोनी टीवी, जी टीवी, आस्था संस्कार में, उसमें आप मुख्य वक्ता रहे, वर्षों तक आपके ही प्रवचन नियमित रूप से प्रसारित होते रहे और अभी पीस ऑफ माइंड चैनल उसमें भी आप सुनते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम आपके प्रसारित होते हैं, विशेषकर मुरली मुरली जो है वो ज्यादातर शिलू बहन जी ही सुनाते हैं पीस ऑफ माइंड में। बॉम्बे से आप ज्ञान में निकले, आपने बीएससी किया, 1969 में आपने अपना ये जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया, पहले साउथ में ही अनेक स्थानों पर आपने सेवा की, फिर विदेश में अफ्रीका मॉरिशस में 2 साल आप रहे, वहां सेंटर स्थापित किया और 1976 में जब यहां शिविरों के लिए टीचर की आवश्यकता हुई तब से आप मधुबन में ही रह करके अपनी सेवाएं देते हैं। शिलू बहन जी भी बहुत सरल स्वभावी, बहुत निर्माण और बहुत ही अथक सेवाधारी हैं और आपके लिए मैं कहूंगी सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए, और हमें शिलू बहन जी का क्लास मिले तो और क्या चाहिए। तो विषय है निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनिश्चयंती। हाँ, एक कहावत है फेथ कैन शेक माउंटेन्स, अगर निश्चय है तो आप पर्वत को भी हिला सकते हैं, इतनी ताकत है निश्चय में। तो कैसे निश्चय से विजय होती है उस पर हमें स्पष्ट करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली सभी ने ध्यान से सुनी होगी, आज की मुरली से ही यह विषय लिया है। वैसे तो गीता में जो महावाक्य है वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो विनाश काल के समय जो परमात्मा में निश्चय रखता है, उनकी हर बोल में निश्चय रखता है, हर आज्ञा में निश्चय रखता है, उसकी निश्चित विजय है। पर जो संशय उठाता है उसका विनाश है। अगर हम गीता देखें, गीता का सार ही यही है। अर्जुन को भगवान में निश्चय था, इसलिए अर्जुन ने भगवान को ही चुना और दुर्योधन को सेना में निश्चय था, भगवान में निश्चय नहीं था, इसलिए उसने सेना को चुना और उसकी निश्चित हार हो गई। ये इतना दूर दूर क्यों बैठे हैं, नजदीक आ जाओ, ये सब इतना दूर क्यों देखो, आगे आ जाओ, आगे आगे, इतनी लाइन इतनी जगह है आगे, देखो कैसे बैठे, आगे आ जाओ, हाँ बीच में जगह नहीं छोड़ो। तो अगर हम गीता देखें, गीता का सार यही निश्चय और संशय नहीं है। पांडवों को निश्चय था इसलिए विजय हुई, कौरवों को निश्चय नहीं था इसलिए उनकी हार हुई। तो अगर हम गीता को ही केवल लें, वास्तव में अभी भगवान डायरेक्ट हमें गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो उसके आधार से हम देखें और गीता से मिलाएं। जो भगवान कहते हैं, मैं तुमको इस समय गीता का ज्ञान दे रहा हूं, तो ऐसी क्या निशानियां हैं, क्या बातें हैं जिसके आधार से हम कह सकते हैं कि ये वही गीता का ज्ञान जो 5000 साल पहले भगवान ने दिया था वो आज फिर से दे रहे हैं। तो मुख्यतः गीता के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात, जब युद्ध का मैदान चारों ओर था, युद्ध के लिए सब ललकार कर रहे थे और यहाँ युद्ध के मैदान के बीच में भगवान और अर्जुन का संवाद चलता है और भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन इन सब को मारो मारो। अब आदेश तो मिला लेकिन क्या विघ्न आ गया, क्यों नहीं युद्ध शुरू हुआ? क्योंकि अर्जुन को थोड़ा संशय उत्पन्न हुआ। संशय इस बात का नहीं कि ये हमें भगवान नहीं कह रहे, ये कोई और कह रहा है। निश्चय तो था भगवान में, निश्चय की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस बात का संशय था, किस बात के कारण संशय उत्पन्न हुआ और कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा? तो कौन सी ऐसी बात थी? वो थी कि वो मोह के वश हो गया। क्या बात थी? मोह के वश हो गया। जब उसने सामने देखा उसका मामा चाचा काका, उसके गुरु जिन्होंने इनको इतना ज्ञान दिया था, द्रोणाचार्य जैसा जिन्होंने इनको तीर कमान चलाना सिखाया, भीष्म पितामह इतने वरिष्ठ वरिष्ठ गुरु और उनके ही सारे भाई वही थे ना कौरवों की तरफ, इन सब को देखकर उनके मन में मोह उत्पन्न हुआ और मोह उत्पन्न होने के कारण उसने कहा मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो वास्तव में सारी गीता अर्जुन को मोह नष्ट करने के लिए ही सुनाया है, सुनाई है। दूसरा अध्याय में क्या दिखाते हैं, भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। हे अर्जुन, तुम कहते हो मेरे मामा चाचा काका आदि है ये सब, मैं इनको कैसे मारूं, मेरे ये भाई है, मेरे ये वडील है, मेरे ये वरिष्ठ है, इनसे मैंने कितनी शिक्षा ली है, मैं इनको कैसे मारूं? तो हे अर्जुन, इनका देह मत देखो लेकिन क्या देखो, इनको आत्मा देखो। और अगर आत्मा देखेंगे तो आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो सारा जो दूसरा अध्याय है वो आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा न जन्म लेती न मरती, आत्मा तो केवल एक चोला बदलकर दूसरा लेती है। इसलिए आत्मा न जलती, न कटती, न सूखती, न गीली होती। प्रकृति के स्पर्श से आत्मा के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आत्मा देखो, शरीरों को मत देखो। और आप क्या करो, अपना कर्तव्य निभाओ। अभी तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुमको युद्ध करना है, इसलिए वो कर्तव्य निभाओ और आत्मा इनको देखो। और ये सोचो ये कभी नहीं, ये मरने वाले नहीं, ये तो केवल शरीर है जो विनाशी है। अब भगवान ने इतना ऊंचा आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन को किस बात का संशय कि मैं कैसे इनको आत्मा देखूं, इतना बड़ा शरीर दिखाई देता है इतना बड़ा शरीर और सारे जीवन की बातें भूलू कैसे, मैं सब भूलू कैसे, कैसे मारूं मैं, ये पाप हो जाएगा। भगवान ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता हूँ। वो तो भगवान भी कहता है, लेकिन मैं ये पाप होगा, उसको ज्यादा अपना ज्ञान का अभिमान आ गया। तो एक और मोह और दूसरी और क्या आ गया, अभिमान, अपनी विद्वता का अभिमान कि ऐसे किसी की हत्या करना ये तो पाप है। तो भगवान को ही ज्ञान देने लगा, ये तो पाप है, कैसे करूंगा, ये अपने आप कोई मर जाए तो और बात है, मैं कैसे मारूंगा, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। अब भगवान कहते करो, और ये भगवान को ज्ञान देना शुरू कर देता है। फिर जब अर्जुन नहीं समझता है तो फिर दूसरा कदम भगवान उठाता है कि कैसे तुम अपना कर्तव्य पालन करो। उसको क्या देता है, आत्मा का स्वमान देता है। हे अर्जुन, तुम पहचानो अपने आप को, आप कौन हो। पहले उनके बारे में कहा, उनको आत्मा देखो, और उसको समझ में नहीं आया क्योंकि मोह के वशता आत्मा कैसे देखे, रिश्ता ये दे का रिश्ता वही उसको बुद्धि में था। फिर जब वो बात नहीं समझ में आई तो फिर दूसरी बात दी कि आप कौन हो, और उसका उनका स्वमान उनको दिया, आप अपने आप को पहचानो। इसमें स्वमान कौन सा दिया, वो तो युद्ध की बात है, इसीलिए उनको कहा तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय की क्या विशेषता होती है, स्वमान दिया। क्षत्रिय की विशेषता क्या होती है, एक बार उसने संकल्प किया, जो प्रतिज्ञा की उसको वापस नहीं ले सकता। धर्म पढ़िए, धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये क्षत्रिय की विशेषता है। आप देखेंगे जितने भी द्वापर युग से राजाएं महाराजाएं थे वो सब क्षत्रिय थे, क्षत्रिय, क्योंकि त्रेता युग के बाद वो क्षत्रिय घराना था ना, तो युद्ध के मैदान में क्षत्रिय जाते थे और राजाई भी उनके हाथ में थी। और उनके अंदर ये एक संकल्प होता था, जो मुख से वचन निकला उसका पालन करना ही है, कुछ भी हो जाए। मरने के लिए तैयार है पर वचन से पीछे नहीं हटेंगे, जो प्रतिज्ञा की, जो संकल्प किया उसको पूरा करना ही है, चाहे उसके लिए मरना पड़े। एक बार हम एक लेख पढ़ रहे थे कि इतने सारे राजपूत थे, ये सब राजपूत दिखाते ना, तो इतने सारे राजपूत थे, कितने राजाएं थे, क्या नहीं था भारत में। ये जहाँ वर्णों की बात आती है तो क्षत्रिय माना जो युद्ध करने के लिए जाए, तो ये सब, ये राजपूत का जो इतना सारा विस्तार था ये सब खत्म कैसे हो गया, क्योंकि उनके अंदर जो दृढ़ता थी कि मरने को हम तैयार हैं, लेकिन हम अपना जो प्रतिज्ञा हमने की है वो तोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए समझो, अगर कोई राजा युद्ध में मरता था तो रानी क्या करती थी, सती हो जाती थी, पतिव्रता नारी, पति की चिता पर जाकर के जलती थी, या जौहर। कितने अगर आप इतिहास देखेंगे भारत का, कैसे स्त्रियों ने, रानियों ने जौहर किया, बोले या चित्तौड़ का बहुत बड़ा मिसाल आता है। और एक एक करके ये उनका लक्ष्य था कि मैदान में मर जाएंगे लेकिन हार खा के वापस नहीं आएंगे, इसलिए मरने के लिए तैयार थे पर हार खा के वापस लौटा है वो नहीं था। इसलिए कई जो राजपूत भारत के अंदर खत्म होते गए, उस प्रकार से खत्म होते गए। तो जब भगवान ने अर्जुन को ये याद दिलाया, हे अर्जुन तुम राजपूत हो, हाँ माना तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय की ये विशेषता है कि जो संकल्प किया है उसको पूर्ण करना ही है, और आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, क्या आप ये प्रतिज्ञा से आप पीछे हटोगे? और आप ये क्यों सोचते हो हम हार जाएंगे? क्यों ये संशय उठा ना, हार गए तो ये हुआ तो ये हुआ तो, आप क्यों सोचते हो हम हार जाएंगे? आपके दादा परदादा तरदादा उन्होंने भी कभी हार नहीं खाई, वो सदा विजयी रहे, सदा विजयी रहे। तुम भी विजयी हो, तुम भी विजयी हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम विजयी हो, तुम कभी हार नहीं खा सकते, तुम पीछे नहीं हट सकते हो, इसीलिए युद्ध करो। और अगर तुम पीछे हट गए, युद्ध नहीं करूंगा ये कहा, तो आपके जो आगे जो जेनरेशन से आपकी जो वंशावली है वो क्या कहेंगे आपके लिए कि मेरा पिता, मेरा दादा, मेरा परदादा ये कायर थे? अब ये सुनना चाहते हो कायर थे, वो तो बहादुर थे, तो तुम बहादुर हो। नहीं, एक कहानी सुनाते हैं, इस पर एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, उस राजा ने ऐलान किया। उसका क्या ऐलान था कि मेरे पास इतना बड़ा पत्थर है, इस पत्थर को जो एक ढक से तोड़ेगा उसको मैं अपना आधा राज्य दूंगा, आधा राज्य उसको दूंगा, एक ढक से तोड़े इतने बड़े पत्थर को। उन्होंने ऐसा बहादुर शूरवीर मेरे सामने आए, मैं उसको ये राज्य दूंगा। तो बहुत शूरवीर धुरंधर मसलमैन आए, अपना अपना वो अपनी शक्ति दिखा करके कि हम ये पत्थर तोड़ेंगे, लेकिन कोई भी एक ढक से उसको तोड़ नहीं सका, बहुत मजबूत था। कितने भी वो मजबूत थे तो भी नहीं, एक ढक से, दस ढक तक लगाए तो चलो हो सकता, लेकिन एक ही ढक से तो नहीं हुआ। फिर आखिर क्या हुआ, एक दुबला पतला व्यक्ति आया, एक दुबला पतला व्यक्ति आया, उसने कहा मैं तोड़ूंगा, लेकिन मेरे आगे मैं भी एक शर्त रखूंगा, और वो शर्त क्या होगी कि मेरे कान में कोई कुछ कहेगा तोड़ूंगा मैं। अब वो दुबला पतला, एकदम दुबला पतला था, तोड़ूंगा मैं, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति मेरे कान में कुछ कहेगा, अगर आपको एतराज न हो तो मैं तोड़ के दिखाऊंगा। अब राजा तो हंसने लगा, ये क्या तोड़ेगा, ताकत तो है नहीं, हाँ कहाँ तो यह थोड़ा भी उठा, यही बहुत बड़ी बात है, तोड़ना तो दूर की बात, ये क्या कर सकेगा। उसने कहा ठीक है, भले तुम्हारे कान में कुछ कहे, हमको कोई एतराज नहीं, तोड़ना तुमको है। अब वो उस व्यक्ति ने उसके कान में कुछ कहा, वो कहता गया कहता गया कहता गया, और ये इस व्यक्ति को ताकत आती गई, शक्ति आती गई, शक्ति आती गई, आती गई, आती गई, इतनी आती गई आती गई, सचमुच उसने एक ठक से तोड़ दिया। अभी अंदर की ताकत आ गई, बाहर तो ताकत नहीं थी, वो इतनी ताकत आ गई जो वो पत्थर तोड़ दिया। सारे हैरान हो गए कि इसमें ताकत तो थी नहीं, कैसे तोड़ा इसने। तब राजा ने उससे पूछा कि पहले ये तो बताओ, इसने आपको कहा क्या, मंत्र, कुछ मंत्र आपके कान में डाला, क्योंकि मंत्र में शक्ति है, ऐसे मानते हैं, इसलिए कान में डालते हैं, है ना, कान में कहते हैं, किसी को सुनाना नहीं, क्योंकि अगर सुनाओगे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, यहाँ तक कहते हैं। तो इसने आपके कान में क्या कहा वो हमें बताओ, जो आपके लिए वो शक्ति का आधार बन गया। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा कि आप राजपूत हो, आप राजपूत कभी हार नहीं खा सकते हो, आप विजयी हो, आप विजयी हो, तुम्हारे पिता विजयी थे, तुम्हारे दादा विजयी थे, याद करो तुम्हारे परदादा विजयी थे, वो विजयी थे, वो विजयी थे, तुम विजयी हो, तुम विजयी हो, तुम विजयी हो, बस यही सुनता गया सुनता गया सुनता गया। तो क्या हुआ, जी उसको ताकत आ गई, शरीर में ताकत नहीं थी लेकिन कहां से ताकत आई? वो कौन सी ताकत थी? वो आत्मा की ताकत थी, मन की ताकत थी, आंतरिक ताकत थी, और उसने तोड़ दिया। तो कहने का भाव है, देखो हम लोग भी बाबा हमें याद दिलाते हैं, बच्चे अपना स्वमान याद करो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। इतने सारे बाबा टाइटल्स देते हैं, टाइटल्स क्या है ये सब? ये स्वमान क्या है? ये आत्मा के अंदर शक्ति भरने के लिए विधि है। कोई बच्चा बहुत कमजोर हो और उस कमजोर बच्चे को कहो नहीं नहीं तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम तो तुम्हें बहुत ताकत है, तुम्हें बहुत ताकत है, वो नहीं होगी ना तो भी अंदर से महसूस होगी। और कोई ताकत वाला हो और उसको कहो तुम्हारी शक्ल तो देखो आज बहुत उदास लग रहे हो, आज बहुत कमजोर लग रहे हो, है ताकत वाला लेकिन उसको खाली बोलो आज बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो, आज आप बहुत बीमार दिखाई दे रहे हो, आज आपका मुंह बहुत पीला पीला है, क्या बात है, क्या हुआ, कोई बुखार है क्या है? और उसको कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि लोगों ने कहा ना, वो कहते 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 क्या हो गया है? हाँ, इस पर एक जोक भी सुनाते हैं कि कुछ है वो जो ऑफिस के जो भी काम करने वाले थे, उन्होंने अपने बॉस को थोड़ा मजा चखाना था, तो सब ने मिल करके क्या किया, एक तरकीब रची कि जैसे ही बॉस आएगा, क्योंकि जैसे ही बॉस आता था ना एक एक पर गुस्सा करता था, तुमने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, मतलब गुस्सा करते करते सबको डांट डांट करके अंदर जाता था। तो सब मिलकर के कहा आज हम इनको मजा चखाएंगे। तो जैसे ही अंदर आया, चपरासी से शुरू हो गया जो प्यून था, सब आज अब ठीक नहीं है कि तक क्यों ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल याद ही। तो जैसे अंदर गया तो दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ कहा, ठीक हो ठीक हो ठीक हो, पर पांचवे छठे तक आए, सब ने अपने अपने जो उनको सिखाया गया था वो कहते गए। आखिर जब 10-12 नंबर तक आ गया, आखिर अपने ऑफिस में जाकर के मैं तो आज बहुत क्या हो गया आज मैं तो बीमार हो गया, और हुआ कुछ भी नहीं, ये सब मजा चखाना था उस बॉस को, नहीं तो वो रोज डांटता था, सबको डांट लगाता था, लेकिन सब ने उसको एक लेसन सिखाया कि इतना अभिमान तुम करते हो, हम भी कम नहीं है। यानी कहने का भाव है कि अगर स्वमान है तो शक्ति आती है, और अगर उसको उसकी कमियां बताते गए कमजोरी बताते गए तो धीरे 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 वो अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है। तो बाबा हम बच्चों को कितना, हर मुरली में देखो कितना प्यार देते हैं, कितना प्यार देते हैं। एक बार बाबा ने पूछा कि बाबा पहले प्यार का सागर है या ये पहले ज्ञान का सागर है? पहले क्या है? प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर तो बाद में है। हमारे यज्ञ की शुरुआत कैसे हुई? प्यार से हुई। इतने सारे साक्षात्कार हुए, वो तो भगवान का चमत्कार था, लेकिन बाबा ने जो इतना प्यार दिया कि वो दुनिया भूल गए। ज्ञान उस समय कुछ नहीं था, पता भी नहीं था, खुद खुदा बस यही ज्ञान था, कुछ समझ नहीं थी, लेकिन साक्षात्कार, चाहे विनाश का साक्षात्कार कराया बाबा ने, उससे इतना जल्दी वैराग आ गया एक सेकंड में, क्योंकि विनाश देखा। चाहे स्वर्ग का साक्षात्कार कराया बाबा ने, तो उससे उस दुनिया की लगन लग गई कि बस अभी गए कि गए, हम नई दुनिया में जाएंगे। और जो बाबा ने खिलाया पिलाया, जो कितना प्यार दिया माता पिता के रूप में मम्मा बाबा ने, उसी के आधार से 14 साल, कोई कम बात थोड़ी है। मनोहर दादी के साथ हम रहते थे ना मधुबन में, तो मनोहर दादी कहानियां वो सुनाती थी यज्ञ की, पुरानी पुरानी कहानियां वो सुनाती थी कई, और हम उनसे पूछते रहते थे, तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है यज्ञ की हिस्ट्री बताना, क्योंकि मनोहर दादी से मैं बहुत सीखी हूँ। तो मनोहर दादी से मैं पूछती रहती थी, एक बार मैंने पूछा दादी 14 साल आपने क्या किया क्या किया 14 साल? तो मुझे बहुत प्यार से कहते, अरे शीलू क्या बताऊं तुमको ना दादियों की ये विशेषता थी, क्या बताऊं, हमको तो लगा ही नहीं 14 साल। मैंने कहा नहीं दादी, फिर भी 14 साल तो रहे ना आप लोग, तो क्या किया इन 14 सालों में? तो कहा हमको तो लगे ही नहीं, हमको तो लगा जैसे 14 दिन ही केवल थे, क्योंकि तो पता ही नहीं चलता था सुबह से रात कैसे हो जाती थी। फिर तो सारे बताया कैसे बाबा भी मुरलियों में सुनाते हैं, संदेशियां ध्यान में जाती थी, फिर वो जो देखकर आती थी वो बाबा को बताती थी और बाबा कहते थे इसका ड्रामा करो। तो धर्मराज की सजाएं कैसे होती है, स्वर्ग कैसा होता है, राजाई कैसे होती है, खाते कैसे, मतलब क्या खाते, वो सारा स्वर्ग का दृश्य वो सब आकर के ड्रामा करती थी। तो ऐसे ही हमारे 14 साल बीत गए, 14 साल ऐसे ही बीत गए। खैर वो बात तो अलग है, लेकिन इतना प्यार बाबा ने दिया, ज्ञान तो बाद में था। तो भगवान आकर के हमको इतना स्वमान देते हैं, हर मुरली में देखो सारा प्यार ही, इसलिए बाबा कहते हैं ना हर मुरली जैसे 3 पेज 4 पेज का लव लेटर है, ये लव लेटर है भगवान का, प्यार का एक पत्र। 3 रूप से बाबा वो प्यार दर्शाते हैं। सबसे पहला प्यार क्या कैसे होता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का स्वमान बढ़ाते हैं ना, तुम बहुत होशियार हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये ताकत है, ये कर सकते, ये प्यार है, भले उस बच्चे में नहीं भी होगा ना, तो भी माँ बाप अगर उसको कहेंगे तो क्या होता है, वो अंदर की शक्ति आती है। अगर माँ बाप बच्चे को कहे तुम बहुत कमजोर हो, तुम तो नालायक हो, तुम तो कभी सुधरेंगे नहीं, तुम कभी नहीं ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, ठीक है मैं सही हूँ हमारे वो अब्दुल कलाम जी आज जब यहाँ आए थे तो उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था कि बचपन में मेरे पिता से मैंने क्या सीखा। एक मेरा क्या, मेरे जीवन में 2 ऐसे व्यक्ति थे जो मेरे अभी तक प्रेरणा के स्रोत है, वो एक मेरे पिता थे और दूसरा मेरा प्राइमरी स्कूल टीचर। वो तो उसने एक मिसाल दिया कि एक बार हम दोनों छोटे थे, मैं और मेरी कजिन सिस्टर थी, तो हम लोग खेल रहे थे, बच्चे थे दोनों, एक उम्र के थे, तो पेड़ पर लटक रहे थे, पेड़ पर ना ऐसे हाथ पकड़ के, नहीं बच्चे लटकते हैं और खेलते हैं, तो वैसे पेड़ को पकड़ करके लटक रहे थे। तो क्या हुआ कि जो मेरी कजिन सिस्टर थी उसने बताया, उनकी माँ आई, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम गिर जाओगी। अभी वो पकड़ा उसने, लेकिन गिर जाओगी ये माँ ने कहा, और सचमुच वो गिर गई, क्योंकि माँ ने कहा गिर जाओगी। लेकिन मेरे पिता कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते थे। मेरे जब पिता आए बाहर, उसने कहा बेटा यू आर वेरी क्लेवर, बहुत होशियार हो, जोर से पकड़ना। ये नहीं कहा तुम गिर जाओगे, तुम जोर से पकड़ना। तो जोर से पकड़ा तो मैं नहीं गिरा और वो मेरी बहन गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि माँ ने कहा गिर जाओगी, तो मुख से कह दिया गिर जाओगी, सचमुच गिर गई। और मेरे पिता ने मुझे कहा कि जोर से पकड़ना, गिरना नहीं, ऐसा नहीं कहा, जोर से पकड़ना। जोर से इतना पकड़ा तो क्यों गिरूंगा। तो बस यही है पॉजिटिव थिंकिंग, वो पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना। तो भगवान भी हमको इतना जो स्वमान देते हैं, ये स्वमान में आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मैं कौन हूँ, जो बाबा कहते हैं ये पहेली है, मैं कौन हूँ, 2 युग से ये पहेली चलती आई है, ये एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स होके गए हैं, यही प्रश्न किया, अपने आप को जानो। माना आत्मा अपनी शक्ति को पहचाने। और दूसरा, बाबा कैसे प्यार देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, ये शिक्षाओं में भी बाबा का प्यार समाया हुआ है। कितनी शिक्षाएं बाबा देते हैं, चाहे ज्ञान, चाहे योग, चाहे धारणा, चाहे सेवा, सब शिक्षाओं में आता है। एक है स्वमान देना, वो माता पिता के रूप में, टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं, पूरा तीनों कालों का तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ये प्यार का ही रूप है। और दूसरा प्यार का रूप क्या है, इतना ऊंचा हमें लक्ष्य देते हैं, तुमको ये बनना है, ये बनना है, प्रलोभन। आज भी बाबा ने कहा ना, कई लोग हम लोगों को कहते हैं ये तो आपका लोभ है, आप कहते हम स्वर्ग में जाएंगे, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम देवता बनेंगे, ये तो आपका लोभ है, आप कहते हमने लोभ को जीता है, कहाँ जीता, आप तो स्वर्ग का लोभ है। तो आज बाबा ने क्या कहा, वो शुद्ध लोभ है, ऐसा लोभ तो सभी रखी है, अशुभ लोभ नहीं है, कलयुग की दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वो लोग तो अच्छी बात है, हम तो सन्यासियों को भी कह सकते हैं आप लोगों के अंदर ये लोभ है, हमको मोक्ष मिले, हमको मोक्ष मिले, आपको मोक्ष मिले, ये आपका लोभ है। हमको दुनिया में आना नहीं, हमें समो जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए आना ही नहीं दुनिया में। तो ये जो आपके अंदर दुनिया के लिए जो नफरत है, सुख काग विष्ठा के समान है, इसलिए संसार में आना ही नहीं है। तो आप समाज का क्या कल्याण करोगे, अपने लिए केवल सोचते हो, ये तो यही स्वार्थ है, ये आपका लोभ है अपने लिए। हम तो विश्व के कल्याण की बात सोचते, सारी दुनिया स्वर्ग बन जाए, केवल हम थोड़े, केवल हम अकेले जाएंगे क्या स्वर्ग में, सबको साथ ले जाएंगे ना, तो दुनिया ही स्वर्ग बनाएंगे। तो ये है शुद्ध लोभ। तो ये बाबा प्यार देते, प्रलोभन देते, जैसे माँ बाप होते ना, पहले तो बच्चे का मान बढ़ाएंगे, स्वमान देकर, फिर देखते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे ये कहना नहीं मानते हैं, तो फिर माँ बाप कैसे दूसरे रूप से प्यार देते हैं, कहेंगे बेटा तुम फर्स्ट आओगे ना तो तुम्हारे लिए साइकिल लेके देंगे, तुमको साइकिल लेके देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे। अब ये प्रलोभन तो देते ना, टेम्पटेशन, ये भी प्यार है। भगवान भी हमको प्रलोभन देते हैं, तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सारे विश्व का मालिक बनेंगे, कितना बड़ा ये प्रलोभन है। पर ये प्यार है भगवान का, पर ऐसे नहीं कि नहीं देंगे, देंगे जरूर ऐसे नहीं माँ बाप खाली झूठा झूठा आश्वासन देते हैं, सचमुच लेके देते हैं, अगर बच्चे इतने पढ़ाई में होशियार हो जाए तो। परंतु फिर भी अगर बाबा देखते हैं कि बच्चे आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, बाबा का कहना नहीं मानते हैं, तो फिर तीसरा रूप माँ बाप कौन सा धारण करते हैं, लौकिक में भी अगर प्रलोभन देने के बाद भी बच्चे नहीं मानते तो माँ बाप क्या करते हैं, डांट लगाएंगे, सजा भी देंगे, सजा भी देंगे, क्यों नहीं, डांट भी लगाएंगे, थोड़ा आंख भी दिखाएंगे। तो बाबा भी हमको आंख दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, पर वो प्यार है। कौन सी आंख दिखाते हो, आज भी बाबा ने कहा बच्चे अगर नहीं श्रीमत पर चलोगे तो धर्मराज की सजाएं खाओगे, बता तो दिया, अभी आपके ऊपर है, धर्मराज की सजाएं खाना या पढ़ाई पूरी करना, बाबा की आज्ञाकारी बनना, श्रीमत पर चलना और ऊंच पद पाना। अब ये देखो सारा गीता के अंदर भी यही है। तो जब अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो नहीं तो कायर कहलाओगे, पर अर्जुन सुनते हुए फिर क्या कहता है, कोई बात नहीं परंतु मैं इनको कैसे मारूं, फिर से वही प्रश्न, कैसे मारूं, कैसे मारूं, क्योंकि मोह के वश हो गया था। फिर भगवान ने तीसरी युक्ति रची, कैसे उसको समझाना, तो भगवान ने उसको क्या कहा कि देखो ये सब मरे पड़े हैं, एक साक्षात्कार करा दिया, सारे डेड सब मरे पड़े हैं, कब्रस्तान बन गया। और भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन अगर तुम नहीं भी मारोगे ना, ये सब मरने वाले हैं, वैसे ही मरने वाले हैं, देखो ये सब मरे पड़े हैं, इनको ऐसे ही मरा हुआ देखो, इनकी मौत निश्चित है, आपको केवल निमित्त बन करके युद्ध करना है, बस निमित्त, इनकी मौत तो होनी है, ये निश्चित ही है, उसमें वो मत सोचो ये मरेंगे ये मरेंगे, इनकी मौत आनी ही है। तो भगवान भी हमको क्या कहते हैं, बच्चे ये सब क्या देखो, बाबा की मुहर मुरली में आता है ना, ये सब कब्रिस्तान बनने वाला है, सब मरने वाले हैं, सबकी मौत निश्चित है, अभी बच्चे घर चलना है। तो जबकि सबकी मौत निश्चित ही है तो पहले से मुंह हटा लो, इसमें क्या है। जब जैसे पता चलता ना कोई व्यक्ति बिल्कुल मरनासन है, होपलेस केस, कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता है, बस अभी 8 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 1 दिन का मेहमान, तो धीरे धीरे क्या होता है उनके रिश्तेदारों में क्या होता है, मोह हटता जाता है, मोह हटता जाता है, न्यारे होते जाते हैं, बस अभी बाकी थोड़ा समय है, आत्मा अभी निकलेगी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो धीरे धीरे मोह हटाना पड़ता है ना कि नहीं, कि और बढ़ाएगी मोह, क्या करेंगे, मोह हटाना पड़ता है, नहीं तो बहुत दुख होगा, इसलिए पता है जाना है। तो बाबा भी हर मुरली के अंदर, बच्चे ये सब मरे पड़े हैं, सब देखो सब मर चुके हैं। अब ये अर्जुन को भगवान ने यही कहा, लेकिन हुआ क्या कि इससे अर्जुन को और दुख हो गया कि ये मरे पड़े हैं परंतु मेरे कारण होगा और मैं निमित्त बनूंगा, मैं निमित्त बनूंगा, मेरे कारण ये मरेंगे, मुझे ऐसा पाप नहीं करना। फिर से वही बात, और ही ज्यादा दुख हो गया कि मेरे कारण ये सब ये कब्रिस्तान बनने वाला है, तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। फिर आगे तो चौथा क्या किया भगवान ने अर्जुन को कहा, ही अर्जुन देखो ये युद्ध स्थल में तुम्हारी अगर विजय होगी तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, और अगर हार भी होगी तो भी आप स्वर्ग में जाओगे, इसीलिए ये युद्ध में स्वर्ग में जाने के लिए ये मार्ग है, इसलिए युद्ध में तुम जीतोगे तो स्वर्ग के मालिक बनोगे, हारोगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, इसीलिए तुम युद्ध करो। तो अर्जुन कहता है मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं, क्या करूंगा स्वर्ग में राज्य करके, इन सबको मार करके स्वर्ग में क्या राज्य करूंगा, इसलिए मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं। ये देखो कैसे सारा कारण जो संशय उत्पन्न हुआ उसका मुख्य कारण क्या था, मोह, मोह। और फिर जब अर्जुन ने नहीं समझा तब भगवान ने क्या किया, उसको विराट रूप का साक्षात्कार कराया, ज्योति का साक्षात्कार कराया, जो कुछ वो साक्षात्कार उसको कराया, और अर्जुन को उस प्रकार से समझाया कि ये तुमको कौन कह रहा है, क्योंकि वो तो कृष्ण को ही देख रहा था, साधारण रूप को देख रहा था, और साधारण रूप माना मनुष्य रूप को देख रहा था, इसलिए उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ, सोचा मेरा मित्र है, भले भगवान है, तो इतना ज्ञान तो था नहीं ना। और जब उसको साक्षात्कार कराया, देखा कैसे सब मच्छरों सदृश उनके मुंह में जा रहे हैं, और इतना विराट रूप, इतने सब देवी देवताएं, और वो शक्ति का रूप, इतना हजारों सूर्यों से तेजोमय, जो जो अनुभव उसने किया, वो जो साक्षात्कार हुआ, उस साक्षात्कार से उसको महसूस हुआ ये मुझे कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, मेरा मित्र नहीं कह रहा है, कोई साधारण नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहा है। और जब ये उसको समझ आ गई कि ये स्वयं भगवान मुझे कह रहा है, और उस वक्त निश्चय इतना बैठा जो तुरंत भगवान के आगे सरेंडर हुआ, हे भगवान अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, मुझे स्मृति आ गई है, अब आप जो कहोगे मैं करूंगा, और बस युद्ध चलूंगा, ये सारी समय की बात है। तो भगवान हमें यही कहते हैं, बच्चे इन सब को मरा हुआ देखो, इतना निश्चय है, ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, ये कौन कह रहा है कि मैं तुमको घर ले जाने आया हूँ, वापस ले जाने आया हूँ, मैं महाकाल हूँ, कालों का काल हूँ, वहाँ तो एक काल आता है एक को ले जाएगा, मैं तो महाकाल हूँ, महाकाल क्या करूँगा, सबको ले जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर बाबा अपने बच्चों को कितना प्यार भी देते, नहीं बच्चे फिर तुमको मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, तुम्हारे लिए सफाई करवा रहा हूँ, इस सृष्टि की सफाई। मैं जादूगर भी हूँ। जादूगर क्या करता है? जादूगर कैसा होता है? जादूगरी क्या होती है? कोई एक चीज को बदल के दूसरी चीज बना देना। वहाँ फूल है, वो फूल को ऐसे ऐसे करके कबूतर बना देना। अंदर में कुछ डाला है, रुमाल डाला और वो रुमाल से कबूतर निकल आया, मतलब बदल देता है। तो हाथ की सफाई, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन करने की शक्ति है, जादूगर कहते हैं। तो भगवान कितना बड़ा जादूगर है, क्या करता है? क्या जादूगरी करता है? सारी नरक की सृष्टि को बदलकर स्वर्ग बनाता है। कितनी बड़ी जादूगरी है। और बाबा कहते तुम बच्चे पावन बनते हो, तो पावन बनते हो तो तुम्हारे लिए पावन दुनिया में बनाता हूँ। कभी कोई मनुष्य के वाक्य नहीं हो सकते ऐसे। और फिर उसके लिए कहा मुझे याद करो, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो, तुमको मेरे पास आना है। तो जहाँ जाना होता है उनको याद करना होता है। तो भगवान एक तो खुद में विश्वास निश्चय, दूसरा बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, ये तो चार निश्चय हम बताते हैं। और उस निश्चय के अंतर्गत थोड़ा भी संशय हुआ, उसमें कमजोरी हमारी अपनी होती है, दूसरे की नहीं होती है। क्योंकि हम लोग ब्लेम गेम खेलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक होता है ना, है मेरी कमजोरी, लेकिन मैं क्या कहूंगी, इसके कारण मैंने किया, इसके कारण किया। अगर ये न ऐसे कहता तो मैं भी उनको जवाब नहीं देता, इसने इसने कहा इसलिए मैंने किया। तो कारण कौन, दोषी कौन? दूसरा। इसीलिए बाबा ने कर्मों का भी ज्ञान दिया है। वो कुछ भी करे, उसका कर्म, उसका पाप, पर मुझे क्या करना है, बस वो मुझे अपने आप को देखना है। इसीलिए परिवार में भी इतना निश्चय हो। अगर हम किसी को दोष देकर और फिर कहें नहीं नहीं मैं सेंटर पर इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अरे कुछ भी किया ना, आप क्यों उसकी चिंता करते हो? वो जो करेगा वो पाएगा। तो उसके कारण आप बाबा को क्यों छोड़ते हो? इसलिए मैं सेंटर पर नहीं जाता हूँ क्योंकि परिवार में दोष देखा। और इसलिए बाबा कहते हैं किसी को मत देखो, अगर देखो तो क्या देखो, यही तो परिवार स्वर्ग में जाएगा। जिन्होंने बाबा को पहचाना है वही तो स्वर्ग में जाएंगे, उनको ही तो बाबा इतना पावन बना रहा है। माताओं को देख के बाबा को कितनी खुशी होती है। ये माताएं जो दुनिया के आगे बिल्कुल अनपढ़, एकदम शोषित, एकदम जिसको पुरुष लोगों ने कहा मेरे बाएं पैर की वो क्या क्या बोलते हैं, एकदम हील ना, लास्ट पार्ट शरीर का वो है, इतना नीचे गिराया और भगवान उनको कितना ऊंचा उठाते हैं। तो भगवान आकर के इस समय तीन कार्य करते हैं, तीन मुख्य कार्य जो कोई इंसान नहीं कर सकता, और उसके लिए सारा ये ज्ञान हमें देते हैं। तीन कार्य कौन से करते हैं? सबसे पहला कार्य है कि शिव बाबा आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म जो सत धर्म, सतयुग का धर्म, देवी देवता धर्म, जो प्राय लोप हो चुका है, प्राय लोप माना, प्राय माना लगभग, नियली, तो प्राय लोप माना केवल निशानियां हैं, चित्र हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है, देवी देवताओं का धर्म नहीं है, केवल यादगार है बस। वो जो धर्म नहीं है वो स्थापन कर रहे हैं, इतना बड़ा निश्चय। और वो कैसे स्थापन कर रही हैं, धर्म की स्थापना किस आधार पर होती है। कोई भी धर्म जब स्थापन होता है ना, तो उस स्थापना का आधार जो होता है वो पवित्रता होती है। जितने भी धर्म पिताएं आए, उन सब ने पवित्रता के आधार पर ही अपने धर्म की स्थापना की। इसीलिए बाबा कहते हैं वो धर्म स्थापक की जो आत्मा है वो ऊपर से आती है। क्योंकि हम जितने भी धर्म स्थापक देखते हैं, क्राइस्ट को छोड़कर, चाहे गुरु नानक देख लो, वो शादीशुदा था, उसको बच्चे थे। मोहम्मद शादीशुदा था, पता नहीं कितनी पत्नियां थी, यहां तक भी दिखाते, कितने बच्चे थे उनके। लेकिन वो नई आत्मा आई, उनके तन में प्रविष्ट हुई और ज्ञान दिया। बुद्ध, महावीर, ये सब शादीशुदा थे ना, वो तो महात्मा बुद्ध की तो मिसाल देते ना, पत्नी यशोदा, उनको छोड़ दिया, राजकुमार था बुद्ध, तो ग्रस्थी तो था ना, बाल बच्चे थे, बच्चा था उनको, तो जरूर द्वापर युग में माना विकारी तो बना होगा ना। तो जितने भी धर्म पिताएं आए, वो जो जिस तन में प्रवेश किया उसकी आत्मा कोई पावन नहीं थी, लेकिन जिसने प्रवेश किया वो आत्मा पावन थी और उसने धर्म स्थापन किया। लेकिन ये दुनिया में कहाँ समझते, तो वो क्या समझते हैं कि क्योंकि मुख तो इनका था ना, धर्म पिता ने आकर के ज्ञान दिया, पर किसके द्वारा दिया, तो मुख तो उनका था जिसके तन में प्रवेश किया, इसलिए उनका नाम हो गया। ये अंतर है दोनों में, ये दुनिया वाले नहीं समझते। तो वैसे ही ब्रह्मा बाबा, वो तो गृहस्थी थे, ब्रह्मा बाबा थोड़े कोई पावन थे, फैमिली मैन थे ना, इतने बच्चे थे, गृहस्थी था। लेकिन शिव बाबा ने आकर के उनमें प्रवेश किया और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया, तो स्थापना के निमित्त शिव बाबा बने, पर वाया थ्रू ब्रह्मा। और क्या कहा, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, और सबको आदेश दिया। ऐसे नहीं कि खाली ब्रह्मा को आदेश दिया, सबको दिया, ऐसे नहीं सबको दिया और बाबा को नहीं दिया, ब्रह्मा बाबा को भी दिया। इसलिए जब शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई और शिव बाबा ने सबको आदेश दिया पवित्र बनो, योगी बनो, तो विरोध हुआ ना। क्यों विरोध हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि पवित्रता के आधार से ही सद्धर्म की स्थापना होगी। और जब बाबा को कहते थे, ब्रह्मा बाबा को, कि ऐसा कैसा आदेश दे दिया सबको, छोटे छोटे बच्चों को भी, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा उस समय, ये मैंने नहीं दिया है, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, मैं भी तो गृहस्थी था, मुझे भी क्या पता था। पर ये शिव बाबा ने आकर के कहा, लेकिन कहा तो इनके मुख से ना, तो लोगों ने क्या समझा कि इनको कहा, और इनको कहा कि आप तो बूढ़े हो गए, आप अगर अभी पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, पर ये छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, इनको आप क्यों कहते हो पवित्र बनो, योगी बनो। तो बाबा कहते थे, बच्चे ये मैंने नहीं कहा, और जिसने कहा उसने मुझे भी कहा, क्योंकि मैं भी तो संसारी था ना, और उसने मुझे कहा और मैंने अपने अंदर में ये प्रतिज्ञा की कि मुझे पवित्र बनना है, योगी बनना है, और साथ में मेरे द्वारा इनको भी कहा। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, शिव बाबा बच्चों के लिए आते हैं, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है, बाबा सुनाते हैं जो बच्चे हैं, पर इनके द्वारा सुनाते हैं तो ये सुन लेता है, और कभी बाबा कहते इनको सुनाता हूँ फिर ये औरों को सुनाते हैं, दोनों बातें। कभी बाबा मुरली में जब अद्वैत मुरली चलाते तो बाबा मना एकदम नजदीक जाए, नजदीक जाए, नजदीक जाए, तो बाबा ने एक मुरली में कह दिया, जब बाबा दृष्टि देते हैं, हाँ वतन से आए और दृष्टि देते हैं, तो सबसे पहले दृष्टि कहाँ जाती है, हाँ? आगे वालों पर या पीछे वालों पर, तो इतना आगे आए, आगे 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 आए, दृष्टि ले, दृष्टि ले, लेकिन पीछे वालों पर पहले दृष्टि जाती है। मना ये बच्चों को कहा, इशारा दिया कि आगे आए, आगे आए, ये मत सोचो। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा की दृष्टि सब बच्चों पर पड़ती है, कोई ऐसा बच्चा ना सोचे कि बाबा की दृष्टि मेरे पर नहीं पड़ी। और यहाँ तक का बाबा उस समय ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चल रही थी, तो बाबा ने उस समय क्या कहा कि जो बच्चा जो बच्ची आखिर में बैठी है लास्ट जो कुर्सी पर, बाबा की दृष्टि उस पर भी पड़ी है। और सचमुच आपको मैं बताऊं, वो बहन से मैंने पूछा जो लास्ट में बैठी थी, कहती है मैं उसी समय वही सोच रही थी कि बाबा दृष्टि तो दे रहे, पता नहीं मेरे को दृष्टि देंगे या नहीं देंगे बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अभी तो चलो नीचे शांति वन में बड़ी स्क्रीन है तो फिर भी पता चलता, लेकिन ओम शांति भवन में इतना बड़ा हॉल और कोई ऐसे चलो छोटे छोटे वो सीसीटीवी थी, लेकिन कोई इतना तो नहीं था जो पूरा स्पष्ट देख सके, वो रूप तो नहीं था, लेकिन वो उस समय वही सोच रही थी। और बाबा ने उसी समय मुरली में कहा कि बाबा की दृष्टि सब बच्चों पर पड़ रही है। तो कहने का भाव है कि बाबा का इतना हम बच्चों को प्यार मिलता है, और उस प्यार के आधार से जो पवित्रता भी कही ना, सब ने प्यार से स्वीकार कर लिया, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, भगवान ने मुझे कहा, इतना भी कोई वो निश्चय भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा को सब समझते थे, शिव बाबा आते ये भी तो ब्रह्मा बाबा को भी संदेशियों ने सुनाया, क्योंकि बाबा तो गीता सुनाते थे और गीता सुनाते थे, गीता हाथ में होती थी, बाबा तो रोज पढ़ते थे, वैसे भी पढ़ते थे, तो देखा कि सब आ रहे हैं, तो बाबा ने 500 गीताएं गोरखपुर से मंगाई थी, गोरखपुर में गीता प्रेस है, बहुत बड़ी प्रेस है, तो वहां पर गीताएं छपती है, तो वहां से मंगाई ताकि एक 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 को गीता का पुस्तक दे सके और हर एक पढ़ सके, और बाबा भी पढ़ते थे। लेकिन जैसे बाबा के हाथ में किताब आई और बाबा ने खोली भी नहीं, शिव बाबा की प्रविष्टता हो जाती थी और शिव बाबा बोलने लगते थे, तो बाबा को खुद आता था, अभी तो मैंने सुनाया कुछ नहीं है, ये कौन सुना के गया। अब ये था उस समय, तो कैसे बाबा ने स्थापना का कार्य किया, धर्म की स्थापना पवित्रता के बल से, और एक धक से पवित्रता इतना सहज हो गई जो बात मत पूछो, क्योंकि बाबा की परमात्मा की शक्ति थी। फिर दूसरा बाबा क्या स्थापन करते हैं, दूसरी चीज क्या स्थापन करते हैं, धर्म के साथ राज्य, जो बाबा कहते हैं दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जो इस समय राज्य है ही नहीं, भारत में राजा है ही नहीं ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। हमारे मोदी जी को कितना सहन करना पड़ रहा है, बेचारा कुछ सोचता भी ये करूं उनको करने नहीं देते ऑपोजिशन, अभी राजा होता तो थोड़ी कोई ऐसे करता, बस राजा का एक हुक्म चला सब उसके उसको मानेंगे, लेकिन अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, वही कहावत है प्रजा का प्रजा पर राज्य के पंचायती राज जिसको कहते हैं, तो पंचों ने कोई बात कही और वो बात अनाउंस हुई तो पंचों की बात माथे पर करना हमको परनाला वहीं का वहीं बहेगा पंचों की बात माथे पर, जो पंचों ने कहा ठीक है हमने सुन लिया, पर करना हमको वही है जो हम चाहते हैं, उनके कहने पर नहीं चलना। कितना सफाई अभियान कहते ये करो ये करो, अब हर एक अपने आप जब तक नहीं करेंगे तब तक सरकार कुछ भी कहेगी जरूर है कि मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि राजा तो है नहीं कोई। और अगर समझो पुलिस भी आए तो पुलिस भी कोई कम नहीं है, हाँ अपने जेब में डाल देंगे। एक बार मैंने किसी को कहा कि देखो पुण्य कर्म किसको कहा जाता है, या ट्रस्टी किसको कहा जाता है, कि वो दान का पैसा है हमको इसको अपने लिए यूज नहीं करना है, ट्रस्टी बनकर रहना है सेवा के लिए सेवा, और दूसरा कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, नेक काम करो लेकिन पूछो नहीं सोचो नहीं ये मैंने किया मुझे इसका फल मिलना चाहिए ये मिलना चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन कलयुग की दुनिया में नेकी तो इतनी होती है, सरकार से पैसा तो मिलता है बहुत मिलता है, तो कितना सेवा में लगाते हैं। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ सेवा करो और भूल जाओ, फिर धीरे धीरे ये कहावत बदलती गई, नेकी करो और कुएं में डालो, कुएं में डाल, कुआं होता है ना, अब सागर की भेंट में कुआं तो बहुत छोटा है। फिर तीसरी, फिर ये भी कहावत बदलती गई, नेकी कर खड्डे में डाल, खड्डा ही बहुत है उसके लिए। तो किसी ने मुझे कहा बहन जी आजकल ये भी कहावत बदल गई है। मैंने कहा क्या? नेकी कर जेब में डाल, समझ गए, नेकी कर और जेब में डाल, इतनी नेकी करो और 90% अपनी जेब में, तो कैसे समाज की सेवा होगी, हो ही नहीं सकती ना। अपना स्वार्थ देश बाद में, पहले अपना मैं। और बाबा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बस इसलिए बाबा को मुरली में कहना पड़ता है, शिव बाबा अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, बाबा को महल नहीं बनानी है। बाबा तो ब्रह्मा बाबा भी झोपड़ी में रहते थे, पुराने मकान में रहे, इतने मकान बन गए, बाबा को कहा बाबा आप ये जो मकान बना ना, ये जो ये वाला इसको हवाई महल कहते हैं, तो ये जो मकान बना, बाबा तो पुराने में ही रहे, तो बाबा को कहा बाबा आप यहाँ पर कमरा लो। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये बच्चों के लिए, बच्चों की कमाई है, बच्चे अपने लिए मकान बनाते, बच्चे आके रहेंगे, ये बाप नहीं दे सकता है। बाबा को वो पुरानी झोपड़ी पसंद है। ये तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद इसको तो रिनोवेट किया, नहीं तो वो तो बहुत छोटा था, बाबा की झोपड़ी भी कितनी छोटी थी, और वो मतलब स्थान यही था, लेकिन हर साल गर्मी के दिनों में बाबा खजूर के जो पेड़ है ना माउंट आबू में बहुत है, उसके पत्ते मंगवाते थे और पत्तों से बाबा झोपड़ी बनवाते थे, अंदर वो ठंडक होती थी पेड़ के, ये खजूर के पेड़ के पत्ते, गर्मी में, फिर तो ठंडी बरसात में तो खराब हो जाती थी। ये तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद इसको परमानेंट शेप दिया है। बाबा का कमरा थोड़ा बड़ा है, यानी तो वो छोटा था, तो बाबा तो बिल्कुल साधारण ही रहे। तो फिर बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए राजाई स्थापन कर रहा हूँ, तो राजाई के लिए क्या चाहिए? धर्म के लिए तो पवित्रता चाहिए, तो राजाई के लिए क्या चाहिए? राजाई के लिए क्या चाहिए जी? प्रजा चाहिए, क्या चाहिए? राजाई के लिए यानी देश, जैसे अभी भारत स्वतंत्र बना, एक अपना राज्य अपने हाथ में आया, तो राज्य स्थापन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, मर्यादाएं, नियम, डिसिप्लिन, है ना, सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, संविधान बना, भारत का संविधान बना, कि ये जो राज्य भारत का है ये किस संविधान के अंतर्गत चलेगा, क्या क्या इसमें कानून होंगे, धर्म निरपेक्ष बनेगा, ये होगा। अभी जैसे पाकिस्तान बन गया, भाई वो तो धर्म के नाम पर बना, तो इसलिए वो मुस्लिम, लेकिन ये धर्म निरपेक्ष बना, हिंदू नहीं, जो सब धर्मों को समान अधिकार है, और उस हिसाब से सारे नियम बने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान भी आते हैं। तो जो जब भी नया राज्य बनता है तो उसका संविधान बनता है, कानून बनते हैं, और उसे उन्हीं कानूनों पर चलना पड़ता है। तो भगवान भी हमको जो नियम देते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक के नियम, मर्यादाएं, उठो तो कैसे उठो, खाओ तो क्या खाओ, सो तो कैसे सो, पहनो तो क्या पहनो, हर एक के लिए नियम और मर्यादा, हर एक चीज के लिए जो ये जो नियम मर्यादाएं, यही हमारे संस्कार बन जाएंगे सतयुग के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर चलो, कभी बाबा राय देते हैं, श्रीमत के अंतर्गत ही बाबा कभी राय देते हैं, बच्चे बाबा की राय ये है, वह कभी बाबा आज्ञा करते हैं, कभी बाबा ऑर्डर निकालते हैं, कभी बाबा ऑर्डिनेंस भी निकालते हैं, है ना, ऑर्डिनेंस तो लास्ट होता है, अगर ऑर्डिनेंस नहीं माना तो बहुत बड़ी सजा है। तो भगवान इस समय जो कुछ हमें मूल्यों में कहते, ये सब श्रीमत, ये हमारा संविधान है, इसलिए भारत में कहते हैं संविधान को महत्व देते हैं। इसलिए मुरली को क्यों इतना महत्व देते, एक तो ये प्यार भरा पत्र है, लेकिन प्यार भरे पत्र के साथ साथ सारे जो ब्राह्मणों के नियम है वो सब मुरली के अंदर है। तो एक एक वाक्य, एक एक शब्द कितना हमारे लिए महत्व का है, इससे राज्य की स्थापना होती, क्योंकि उसको हम धारण करते हैं तब हम फिर भविष्य में राजा ही लेते हैं, वो संस्कार अपना बनाते हैं। तो धर्म की स्थापना, राज्य की स्थापना, और तीसरी बात क्या स्थापन करते हैं बाबा, ईश्वरीय परिवार। ये परिवार है, सतयुग भी भले वहाँ धर्म है राज्य है लेकिन वहाँ एक परिवार है, लक्ष्मी नारायण और उनकी सारी प्रजा एक परिवार के रूप में है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को पालनहार, विष्णु को पालनहार क्यों कहते हैं, वैसे माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं वैसे ही लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन महारानी है लेकिन पालनहार के रूप में। आज भी देखो हालांकि कोई है नहीं राजाई भारत में, लेकिन आप जहां भी जाओ जो नाम मात्र राजाएं है भी ना, जिनके पूर्वज राजा थे, अभी तक वो प्रजा उस स्थान की उसको इतना महत्व देती है, उनको माता पिता के रूप में मानते हैं। तो कलयुग में इतना मानते हैं तो सतयुग में क्या नहीं होगा, आप सोचो। तो परिवार, तो वो जो सतयुगी देवताई परिवार था, जब बाबा 9 लाख की बात कर रहे हैं शुरू में, ये 9 लाख एक ईश्वरीय परिवार था और वो देवी परिवार बन गया। फिर धीरे धीरे त्रेता अंत तक जो चलो 16,108 रानियां मना जो रॉयल फैमिली, फिर 9 लाख, फिर धीरे धीरे जैसे द्वापुर में आ गए बढ़ते गए अलग अलग धर्मों में चले गए, अलग अलग राज्यों में चले गए, अलग अलग देशों में चले गए, कहाँ बढ़ गया, कहाँ पर बिखर गए जो सतयुगी परिवार। और कलयुग अंत में वो देवी देवता धर्म की आत्माएं सारी दुनिया में बिखर गई। अभी बाबा को फिर से इकट्ठी करनी है, इकट्ठी करके एक ईश्वरीय परिवार बाबा बना रहे हैं। कितना बाबा विदेशियों को इतना प्यार क्यों करते हैं, अनेक धर्म जाति भाषा प्रांत देश संस्कृति सबके पर्दे हटा करके बाबा के बच्चे आके बनते हैं। आप सोचो कहाँ पहुंच गए, थे तो एक ही ईश्वरीय परिवार के, देवी परिवार सतयुग के, पर वो कलयुग अंत में सारी दुनिया में बिखर गए, अब वापिस आ रहे हैं और फिर से एक परिवार ईश्वरीय परिवार बन रहे हैं। तो एक परिवार बनने के लिए क्या चाहिए, वो तो बट गए सारी दुनिया में बिखर गए, पर फिर से एक परिवार होने के लिए क्या चाहिए, ये सब हदें तोड़नी पड़ेगी, धर्म जाति भाषा ये सब जो हदें बनाई है मनुष्यों ने, ये भगवान ने नहीं बनाई, यही कहते हैं ना हमने बनाई है। तो अगर हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये सब हदें तोड़नी पड़ेगी। तो हदें तोड़ने के लिए बाबा ने क्या उसकी युक्ति बताई है, क्या विधि बताई है, एक विश्व परिवार बनाने लिए, आत्मा आत्मा भाई भाई, हम सब आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे। कई लोग हम लोगों को कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां सारा दिन आत्मा परमात्मा यही बोलते रहते हैं, इनको आत्मा परमात्मा के सिवा और कुछ आता नहीं है। तो बाबा कहते हैं यही तो चाहिए। आज दुनिया में देखो इतना योगासन किए, क्या नहीं किया, प्राणायाम किया, हम भी 21 जून को हमें देहरादून में ही थी जहाँ मोदी जी आए हुए थे, और पूरा उसने जो अनाउंसमेंट होती थी वैसा वो भी कर रहा था, हम भी थोड़ा कर रहे थे, वीआईपी लॉन्च वीआईपी एरिया में बैठे थे, तो सब कुछ उसने कहा कैसे मन शांत करो, शून्य बन जाओ, ये कपड़ा, आत्मा परमात्मा का एक बार भी नाम नहीं लिया एक बार भी नाम नहीं लिया, भले जो कुछ भी कहा, भले तन फिर मन फिर बुद्धि आत्मा, ये सब कहा जाता है यही योग है, लेकिन आत्मा परमात्मा का एक बार भी नाम नहीं लिया गया, तो योग माना क्या, योग माना आत्मा का परमात्मा से संबंध, और उसका तो वर्णन ही कहीं नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो योग भी अधूरा है, योग तो कौन सिखा सकता है, भगवान ही सिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो यहाँ एकदम ऐसे पक्के हो जाओ, कुछ भी गारंटी, गारंटीड माल है ये, गारंटी माल पहुँचेगा मंजिल पर, नई दुनिया में भी पहुँचेंगे। धर्म राज्य और परिवार की स्थापना करके भगवान के साथ सभी को घर चलना है, चलना है ना घर, यहाँ बैठना है, हा? घर के लिए जाने लिए तैयार है सभी, बैग बैगेज पैकते है सब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद शिलू बहन जी, आपने बहुत सुंदर रीति से अपने अनुभवों से स्पष्ट किया कैसे निश्चय बुद्धि विचयंती है।